ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ பிரத்யக் போதானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
मैंने वहां देखा मंदिर में, गृहदेश्वर के मंदिर में, ऊपर मंदिर के ऊपर भरतनाट्यम के जितने स्टेप्स है सबकी मूर्तियां बनी है, और एक उसमें भरतनाट्यम का है कि अपना चरण उठा के पीछे ले जाके आगे लाके उससे अपने को तिलक करना. आप सोच सकते हैं? और हमारे पास अभी एक लड़की है, वो कर सकती है ऐसा. What a thing. सब दिखाया. भरतनाट्यम is not ordinary. तो ये जो सब बात है, ये शंकर भगवान गुरु के रूप में उपदेश करते हैं, तो उनका नाम क्या हो जाता है? दक्षिणामूर्ति. ब्रह्मा विष्णु गुरु के रूप में उपदेश करते हैं, तो नाम क्या हो जाता है? दत्तात्रेय जी. क्या भूल गए एक दिन में, क्या हो गया? और कृष्ण उपदेश करते तो क्या हो जाता है? गीता उपदेशक है, जगत गुरु कृष्णम. श्री कृष्ण भी किसी का उद्धार करना चाहे, ठाकुर जी आपका मोक्ष देना चाहे, तो क्या करना पड़ेगा उनको? उपदेश करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, हाथ में पुस्तक लेके आपको पढ़ाना पड़ेगा. अर्जुन को भी पढ़ाया, शंकर भगवान ने भी पढ़ाया. किसको पढ़ाया? पुराणों में कथा आती है, प्राय पार्वती को पढ़ाते थे. लक्की है, पार्वती है. देखो, पति बुद्धिमान हो तो उसे भी पढ़ना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए. दत्तात्रेय जी पढ़ाते रहते हैं. और आप देखिए, शंकर भगवान गुरु के रूप में उपदेश देते हैं. शंकर भगवान के द्वारा ही सब पुराणों का वर्णन है. हमारे प्रातः स्मरणीय महाराज जी कहा करते थे, जब तक कोई भी पुराण के कोई भी शास्त्र वचन शंकर भगवान के द्वारा उच्चारित नहीं होता है, तब तक वो मंत्रात्मक नहीं बनता है. ये रहस्य है कि जब तक शंकर भगवान नहीं बोलेंगे, वो मंत्रात्मक नहीं होगा. आइए, एक कथा ऐसी है कि सनक आदि जो विरक्त है, जिनकी दुनिया में कहीं आसक्ति ममता नहीं है, किसी देश में, किसी काल में, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में कोई आसक्ति नहीं है, मुक्त होकर घूम रहे हैं. एक बार बाबा को किसी ने पूछा, उड़िया बाबा को, साधु को अपने पास कितना सामान रखना चाहिए? तो बोले, लघु शंका करके वापिस ना आना पड़े इतना बस. लघु शंका के लिए गए, फिर आगे जाओ, फिर वापिस आने का इतना. बाबा ऐसे ही रहते थे, कौपीन बनत कलु भाग्य बनत. तो ये सब जिज्ञासु है. सनक सनंदन सनत सनत सुजात सनत. तो उनके हृदय में वैराग्य था, और वेदांत का उपदेश करने वाला भी वैरागी ही होता है, सन्यासी होता है. वेदांत सन्यासी से सुनना चाहिए, ऐसे हमारे महाराज श्री कहा करते थे. वो भी परंपरा से प्राप्त, जो विद्या जिन्होंने प्राप्त किए उनसे ही सुनना चाहिए. मैं कहा, महाराज जी ऐसा क्यों? तो कहा, मैंने जितने साधुओं को काशी में पंडितों से वेदांत पढ़ने के लिए भेजा, सबका सब चौपट हो गया ज्ञान उनका. क्योंकि वो पंडित कहते थे कि जब तुम सन्यासी हो, क्या हम गृहस्थ के बाद पढ़ने आते हो? तो गृहस्थ धर्म ऊंचा कि सन्यास धर्म ऊंचा? देखो, हम गृहस्थ होके भी वेदांत पढ़ाते हैं, और हमको गृहस्थ में कोई आपत्ति नहीं है, तो तुम भी क्या बनो? उनको भी गड़बड़ कर दिया. इसलिए कहते थे कि नहीं, किससे पढ़ना चाहिए? सन्यासी से. इसमें वैराग्य है. तो ढूंढ रहे थे ऐसे सन्यासी को, विरक्त को ढूंढ रहे थे. कौन? सनक सनंदन. पहले गए ब्रह्मा जी के पास. जगत के निर्माता है, वो हमको ब्रह्म ज्ञान दे देंगे. और ब्रह्मा जी की पत्नी कौन है? आप लोग को जरा डर के क्यों हुई? बोलो सरस्वती, बोलो क्या बात है? जब सृष्टि बनाना है तो कोई भी चीज बनाने के पहले ज्ञान चाहिए, इसलिए सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा जी के पास सरस्वती है। सरस्वती वीणा पाणी है, हारमोनियम नहीं। हारमोनियम तो मोस्ट ट्रेजेडी ऑफ द इंडियन म्यूजिक इज हारमोनियम। ओके, शी प्लेस वीणा, वीणा पाणी सरस्वती। तो गए सनत कुमार उनके पास, वो तो वीणा बजा नहीं रही थी सरस्वती, और वो सुन रहे थे बड़े प्रेम से। उन्होंने कहा थे राग रागिणी में राग है इनका, वहां से चले आए और फिर गए महाविष्णु के पास। तो क्या देखा, क्या देखा? हाँ, आप भी अगर लक्ष्मी की, लक्ष्मी से सेवित विष्णु भगवान के पास मर के जाएंगे तो सुख होगा कि दुख होगा? दुख होगा कि मेरी लक्ष्मी तो नहीं, वहां पाव डबाने वाली छूट गई, मैं अकेला यहां रह गया, इनके तो पाव डबाने वाला कोई है, जेलसी होगी। तो लक्ष्मी लालित चरणारविंद, अरे तो स्त्री के साथ रहते हैं, वहां से चले गए। शंकर भगवान के पास गए तो उनकी तो गोद में पार्वती बैठी है। नमस् नमः शिवाभ्याम नव यौवनाभ्याम परस्पराश्लिष्ट वपुर्धराभ्याम नगेन्द्र कन्या ऋषकेतनाभ्याम नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम। गोद में लेके बैठे, ये तो और गड़बड़ है। उनका तो सुन रहे थे, इनके चरण सेवा रही थी और इनके क्या है, गोद में है। ये हमको क्या उपदेश करेंगे? जिज्ञासु वांटेड सर्टन फॉर्म ऑफ द टीचर। हम लोग के एक स्वभाव हो गया है कि साधु हो गुरु हो किस प्रकार का होना चाहिए, नहीं मिला, निराश होके चले गए। तब शंकर भगवान के हृदय में करुणा आई। एक बात है, हमारे महाराज श्री कहा करते थे, जो सच्चा जिज्ञासु है उसको ज्ञान भगवान अवश्य देता है, कहीं से भी उसको मिलके ही रहेगा। उड़िया बाबा को तो साक्षात वशिष्ठ जी ने उपदेश किया, आखिर ऐसा कुछ वर्णन है। तो उन्होंने महाप्रगट शंकर भगवान को दया आई, करुणा मूर्ति है वो, वटवृक्ष के नीचे दक्षिणा मूर्ति के रूप में प्रकट हो गए। एक हाथ में वेद भगवान है, माला है, ऊपर डमरू है हाथ में, और यहां मशाल, मशाल मानी अग्नि है, और साथ में चिन्ह मुद्रा है चारों हाथ में, और नंदी पे बैठे हुए है, और वृक्ष वटवृक्ष के नीचे है। एक बाजू दाहिनी और नागाभूषण है कान में, और बाईं ओर एक कुंडल है, वो पार्वती का सूचक है। सर पे गंगा है, और एक ओर सूर्य है, दूसरी ओर चंद्रमा है, कहीं रुद्राक्ष की माला धारण किया हुआ है। इस प्रकार से प्रकट हो गए दक्षिणामूर्ति। इनको देख के सब शरद कुमार उनकी शरण में गए और उनको उपदेश किया। ये दक्षिणामूर्ति की एक कथा है, है ना? अब आज आरंभ करते हैं दक्षिणामूर्ति सूत्र। आप सबको मालूम है प्रथम श्लोक है कि नहीं मालूम? तो मैं जरा राग बदल के गाऊंगा तो आपको महाराज श्री जैसे बोलते थे ना, ऐसे विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी। बोलिए सब लोग, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। साथ में बोलेंगे, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत भूतम यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम्
तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमैदम् श्री दक्षिणा मूर्तये तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमैदम् श्री दक्षिणा मूर्तये।
कितना सुंदर इदम् दक्षिणा मूर्तये नमः, या मेरा गुरु मूर्ति भगवान दक्षिणामूर्ति जो अपने आत्मा से अभिन्न है, जो परब्रह्म है, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूं, प्रणाम उनके सामने हो रहा है। दक्षिणामूर्ति का एक अर्थ और ये होता है, दक्षिणाश्च असो अमूर्तिश्च, ऐसी जो दक्षिणा मानी दक्ष है, उपदेश करने में जो कुशल है या सृष्टि स्थिति लय करने में जो समर्थ है उसी का नाम है दक्षिणा। अमूर्ति माने जो अनंत अखंड स्वरूप है वो है दक्षिणा मूर्ति। और दूसरा अर्थ प्रातस्मरणीय महाराज श्री कहते थे कि दक्षिण मानी दाहिना हाथ भी होता है, दाहिना ये अपने हाथ को कौन सा हाथ कहते थे, दाहिना हाथ को क्या हाथ कहते हैं, दक्षिण हस्त, क्योंकि पूर्वाभिमुख होकर जब संध्या वंदन ब्राह्मण करता है तो उसका जो हाथ दक्षिण दिशा में है वो कोई ना कौन सा हो जाएगा, दाहिना हाथ, और ये होता है वाम। दाहिना होने मानी अनुकूल होना, मानी दक्षिणा मूर्ति जिज्ञासुओं को हमेशा अनुकूल है, कभी प्रतिकूल होती नहीं है, ऐसे दक्षिणा मूर्ति को मेरा प्रणाम है। अब यहां श्लोक का आरंभ करते हैं कि अगर हमारे घर की बालकनी, बालकनी माने गैलरी को हिंदी में कहते हैं, जरूखा में एक बड़ा आईना लगा दिया, दर्पण लगा दिया, तो बाहर का रास्ता, उस पे चल रही है गाड़ियां, समुद्र, बिल्डिंग, चलते हुए लोग, उड़ते हुए पक्षी, आकाश का बादल, ये सब कहां दिखेगा, दर्पण में दिखेगा। दृश्यमान नगरी विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, ये जो विश्व है, विश्व शब्द का अर्थ संस्कृत में होता है विविध प्रत्यय गम्यते इति विश्वम, जो विविध प्रकार की चित्तवृत्ति के रूप में जिसका बोध होता है, ग्रहण होता है, उसी का नाम है विश्व। शब्दाकार, स्पर्शाकार, रूपाकार, रसाकार, गंधाकार, इसी रूप में अभी मैं एक प्रश्न आपको समान सामान्य करता हूं, यह हमारे महाराज श्री भी कहा करते थे कि ये जगत कहां दिख रहा है, ये मेरे पास जो घड़ी है वो कहां दिख रही है, मेरे हाथ में दिख रही है, मेरे हाथ में घड़ी आपको कैसे मालूम पड़ा, मन में मालूम पड़ा, तो घड़ी कहां दिखती है, मन में दिखती है, मन में भी घड़ी दिख रही है, किसको दिख रहा है, आपको दिख रहा है, कौन कहता है घड़ी है, मैं कहता हूं, मैं कौन है, आत्मा, आखिर घड़ी कहां दिखती है, एक अर्थ लीजिए मन में भी दिखती है, घड़ी के आकार की वृत्ति बनती है, घड़ी का ज्ञान होता है, घड़ी के आकार की वृत्ति बनती है, घड़ी का ज्ञान होता है, घटाकार वृत्ति घट ज्ञानम, पटाकार वृत्ति पट ज्ञानम, मठाकार वृत्ति मठ ज्ञानम, सो सब जगत को अपनी अंदर वृत्ति के रूप में विषय के रूप में, विचार के रूप में हम ग्रहण करते हैं। जगत वहां नहीं, कहां मालूम पड़ता है? यहां मालूम पड़ता है। हो गया, यह है जगत विश्वम विविध प्रत्यय गोचरम दर्पण दृश्यमान। दर्पण में जैसे दिखता है। अब आप बहुत संभाल के आज और कल ये प्रवचन सुनना, ये श्लोक समझ में आ जाएगा तो पूरा वेदांत समझ में आ जाएगा, और पूरा वेदांत समझ में आएगा तब ये श्लोक समझ में आएगा। सब लोग धीरे धीरे समझते हैं, चाय देर से पिया होगा तो गड़बड़ है। वेदांत ऐसा है। अब आप ग्रहण करिए, दृष्टांत और दाष्टांत ये दो शब्द संस्कृत में होता है। दृष्टांत से क्या ग्रहण करना चाहिए, जिसके लिए दाष्टांत है वो बहुत ध्यान रखना चाहिए। दृष्टांत का सर्व भाग जो है, अंश है, वो दाष्टांत में घटित नहीं करना चाहिए। अमुक अंश है उसमें ग्रहण करना चाहिए। किसी ने कहा कि मेरी पत्नी का मुखारविंद चंद्रमा के समान है, इसलिए चंद्रमुखी कहा। इसका मतलब क्या होता है? दृष्टांत दिया चंद्रमुखी, चंद्र के साथ सदृश उसका मुख है, और दाष्टांत में क्या लेने का? जैसे चंद्र की चांदनी में बैठने पर मन में जैसे आह्लाद होता है, ऐसे उसके साथ बैठने पर हमारे मन में क्या होता है? आह्लाद होता है। बस वो कहे, आगे बढ़ने का नहीं। फिर ये मत कहना तो चंद्रमुखी है तो अमास के दिन आप क्या करते हैं, अमास के दिन तो दिखेगी नहीं क्योंकि अमास के दिन चंद्रमा दिखता नहीं है, और चंद्रमा पे काला काला डागा है तो आपकी मुख पत्नी के मुख पे भी क्या होगा? काला काला डागा। और चंद्रमा की कला बढ़ती घटती है, हर रोज घर जाने पे उसकी कला क्या होती है? बोलो बोलो, उसकी चंद्रमा बढ़ती, उसकी कला बढ़ती घटती है, मेरी भी बढ़ती घटती है, ये सब नहीं है इसमें। बस लास्ट क्वेश्चन है, स्वामी चंद्रमा तो इतना दूर है तो आप अपनी पत्नी तक पहुंचते कैसे हैं? वो तो बहुत दूर हो गई चंद्रमुखी। डोंट गो इन डिटेल, ओके? प्रॉब्लम विल बी, मैं चंद्रमुखी को लेना पड़ेगा वापिस हमको। चंद्रमुखी शब्द का इतना ही अर्थ ग्रहण करने का कि चंद्रमा की तरह सुंदर है, और चंद्रमा की तरह क्या है? आह्लाददायिनी मेरी पत्नी है, क्योंकि अभी अभी शादी हुई है इसलिए। बाद में ज्वालामुखी, और गिरीश भाई कहते हैं सूर्यमुखी। अभी आज मैं कह दूंगा उनको शाम को, है ना? ऐसे नहीं है, देवियां सब चंद्रमुखी है मेरे लिए। तो समझ में आया, दृष्टांत और दाष्टांत में कितना अंश ग्रहण करना इसकी मर्यादा होती है। इसी प्रकार से ये सब समझना पड़ता है। मॉडल यू टू यूज प्रॉपरली, अदरवाइज क्रिएट प्रॉब्लम्स। दर्पण में जो चीज सामने होती है उसका प्रतिबिंब न होता है, बिंब प्रतिबिंब, ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्शन। अब आप देखिए, दर्पण के अंदर विश्व पूरे के पूरा दिखता है कि हाँ, बाहर का दृश्य का काल, अगर बाहर सुबह है अंदर क्या है? मॉर्निंग। बाहर वर्षा हो रही है तो अंदर क्या हो रहा है? दर्पण के अंदर भी प्रतिबिंब में वर्षा हो रही है। बाहर दंगा हो रहा है, यहां भी दंगा हो रहा है। वहां जितनी गहराई है वो यहां भी दिखती है। मां जैसे स्त्री पुरुष चलते फिरते हैं, जिंदा है वो भी जिंदा है दिखाई देते हैं। जितना बाहर है इतना दर्शन दर्पण के भीतर भी वैसा का वैसा दिखता है। अभी आप हमारा प्रश्न का उत्तर दिए, ये दृश्य को दिखाने के लिए दर्पण में कोई विकार हुआ, उनमें कोई विकार हुआ बदल गया, ओके दिया, क्या कोई चीज अंदर घुसी? वहां अभी भी क्या है? दर्पण की क्लीन सरफेस है, न बाहर से कोई अंदर गया न अंदर से कोई बाहर आया, फिर भी क्या है? दिख रहा है, जो अंदर नहीं होने पर भी दिख रहा है, इतना दृष्टांत है। दृष्टांत देखिए, इस समग्र विश्व प्रपंच जिसमें हम दिन रात डूबे हुए हैं, जैसे तैसे करके भवन में पहुंचे, अध्यात्म भवन में पहुंचे, फिर यहां से वापस जाना है। मुझे याद है एक देवी देवी है, बड़ी उम्र वाली है, वो कांदीवली से आती है, बड़ी उम्र की है, रोज बोरीवली से आती है। मुझे याद है अगले महाराज के सामने विरार से आते थे, गोरेगांव से दूध आता था महाराज जी का। ऐसे लोग ट्रैवल करते हैं, पूरे दुनिया में जाना आना, मिलना बिछड़ना सब कुछ देखते रहते हैं। कल ट्रेन बंद हो गई, ये भी अनुभव सबने किया। आज चालू है कि बंद है? आज है? चालू होगी कि हो गई? ठीक है, गड़बड़, मुंबई में हर रोज कोई समाचार होता है। तो ये सब, कोई मर गया, बड़ा एक्टर मर गया, उसका समाचार, फिर हमारा हनुमान जी गया दारा सिंह, उसका अनुभव, सब कुछ बात आती रहती है। इंटरेक्शन सो मच, ये जगत अनुभव हर पल होता रहता है। कहां? यहां। यहां मानी क्या? आत्मनी, अपने आपा में ये पूरे जगत का अनुभव या दिखना होता है। मैं अपने अंदर ये पूरे जगत को देख रहा हूं। महाराज जी, जगत बाहर दिखता है कि भीतर? बाहर दिखता है कि भीतर? अब हमको क्या लगता है? बाहर ही है। इसलिए महाराज आप कैसे कहते हैं अंदर है? यथा निद्रया, आप लोग जब सो जाते हैं, दुनिया में एक ही चीज सबसे अच्छी लगती है, वो क्या है? कई लोग यहां इसीलिए आते हैं तो निद्रा समाधि स्थिति ही बड़ा आनंद आता है। कोई कंप्लेन नहीं करता है, कल भी सोना पड़ा, परसों भी सोना पड़ा, आज भी सोना पड़ रहा है, हर रोज सोना पड़ता है, ये सब क्या है? तो कोई कंप्लेन करता है? कंप्लेन दूसरी करता है, आज भी उठना पड़ा, कल भी उठना पड़ा सुबह। द स्लीप इज अ इनवाइटिंग एक्सपीरियंस। एक बार खराटे बोलते हुए आप सो जाते हैं, फिर जग जाते हैं, ऐसे सो रहे हैं लोगों की दृष्टि सो रहे, फिर अंदर जग जाते हैं, उसको कहते हैं हाफ अवेक, आधे जग गए, आंख बंद है, जगत नहीं दिख रहा है, सुन नहीं रहे, पर मन जग जाता है। और जो जागृत की स्मृतियां है, संस्कार जन्य स्मृति ही, वो जागृत हो जाती है, और वहां आपको फिर बढ़िया देश, बढ़िया काल, बढ़िया लोग, पूरा विश्व दिखने लगता है। वहां बड़ा हाथी भी दिखता है, हाथी आपके पीछे भाग रहा है ये भी दिख रहा है, और आप दौड़ रहे और दौड़ नहीं सकते ये भी दिख रहा है, सब दिखता है रात को। उस समय वो जो स्वप्न दिखता है, वो आपकी अंदर दिखता है कि बाहर दिखता है? मैं कोई डिफिकल्ट प्रश्न पूछ रहा हूं? स्वप्न में आपको जगत बाहर दिखता है कि अंदर दिखता है? अंदर कि बाहर दिखता है? है अंदर, दिखता कैसा है बोलो भाई? उस समय ऐसा नहीं लगता मेरे अंदर जगत दिख रहा है, ऐसा नहीं। उस समय क्या है? हाथी अंदर है कि बाहर है? बाहर है। सास कहां है? वो भी बाहर है। और पति परमेश्वर? बाहर ही है, सब बाहर है। ये सब बाहर की चीज दिख रही है, वहां की पानीपुरी क्या है वो भी बाहर है, पर है कहां? अंदर होने पर भी बाहर दिखता है, बाहर दिखने पर भी अंदर होता है। यथा निद्रया अविद्यया, निद्रा मानी अविद्या, अविद्या दोष के कारण जो अंतकरण में स्फुरित होने वाला स्वप्न है, जागृत की स्मृति जो प्रकट हो रही है, स्वकाले सत्यवत बाती, उस समय सत्य दिखता है और उस समय अपने भीतर ही दिख रहा है, फिर भी ऐसा लगता है वो बाहर है। इस समय भी इस जागृत का जो जगत है जो बाहर दिख रहा है, पर फिर भी कहा है अपने आत्मा में ही है। आत्मा में दिखने पर भी क्या आत्मा में वो अपना विकार प्रकट कर सकता है? आत्मा में कोई विकार नहीं ला सकता है। आत्मा निश्चिद्र है, निर्धर्मक है और शुद्ध है। ऐसा जिसको बोध हुआ है, ऐसा जिन्होंने हमको प्रबोध समय, जागने के समय बोध कराया कि जागृत अपने से अभिन्न है, विश्व अपने से अभिन्न है और आत्मा में न जागृत है न स्वप्न है, आईने के अंदर है कुछ बस सफेद है। ऐसा जो गुरुमूर्ति जो बोध स्वरूप है वही मेरा आत्मा है, उसको मेरा ये प्रणाम है। ये श्लोक थोड़ा कठिन है, फिर कल उसका विचार करेंगे। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।